إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس کتاب کو جن لوگوں تک پہنچایا اور پھر ان کی تربیت کی اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے جو رجال تیار کیے جن انسانوں کی تربیت کی وہ کیسے تھے، ان کو قرآن کا نمونہ بنایا، قرآن کے وہ ماڈل تھے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ یہ لوگ چلتے پھرتے قرآن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر قرآن لکھ دیا تھا اور وہ قرآن کے نمونے چلتے پھرتے تھے۔ اور خود سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فی ظلال القرآن تفسیر کی بالکل ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ حیاتی ما عشت فی ظلال القرآن، میری تو زندگی وہی ہے جو میں نے قرآن کے سائے میں گزاری۔ گویا کہ وہ دنیا کے بہت بڑے بریسٹر ہونے کے باوجود اس پر فخر نہیں کرتے، بلکہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ زندگی کا وہ حصہ جو قرآن کی روشنی میں گزاری گئی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ اس قرآن نے جو ماڈل تیار کیے ہیں ان میں سے ایک کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب وہ مکہ میں تھے تو مکہ میں انہوں نے جو اپنی زندگی کا سٹائل تھا، جو اختیار کیا سٹائل، انسانوں اور پرندوں اور درندوں کا شکار کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ میں نے آج اتنوں کا شکار کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ خود وہ جو ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے لوگوں سے کہتے تھے کہ ایوہ الناس لو دلت طریق شاۃ فی عراق عمر مسئول عند اللہ، اگر کوئی عراق میں بکری بھی راستہ بھول گئی یا اس نے ٹھوکر کھا کے وہ گر گئی تو اللہ کے نزدیک عمر سے پوچھا جائے گا، پھر ذمہ داری کا یہ احساس ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے جس کی ابتدا تو یوں تھی، اور وہ جب خلیفہ وقت بنتے ہیں اس وقت ان کی فوجوں نے، ان کے مجاہدین نے بیت المقدس جو آج بھی یہودیوں کے حصار میں ہیں اور پوری امت بے بس ہے، اسی بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ سخت سردی تھی، 29 دن گزر چکے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کمانڈنگ کر رہے تھے، اور ایک دن کیا کہ اس قلعے کے اوپر، بیت المقدس کے قلعے پر ایک عیسائی پادری آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عربوں، وہ عرب کہتے تھے، ہماری کتاب میں ایک ایسے انسان کی کچھ نشانیاں لکھی ہیں، اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہے تو ہماری کتاب ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں اور قلعے کے دروازے کھول دیں۔ اس نے جو نشانیاں بتائیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اور صحابہ نے سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو ساری نشانیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں، لہذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیے، اس لیے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے انسانیت کا خون بہنے سے بچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ امیر المومنین ضرور جائیے، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی فوجوں نے بیک وقت دو سپر پاور سے ٹکر لی ہوئی تھی، وہ مدینہ منورہ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے نمونہ تھے، ماڈل تھے، قرآن ان کا اڑنا اور بچھونا تھا۔ اڑنا اور بچھونا ہم محاورن تن کہتے ہیں، لیکن ذرا اسی قصے میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں قرآن کا یہ نمونہ نظر آئے گا کہ कि वो कैसे ओढ़ना होता है और कैसे बिछोना होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ग़ुलाम को लिया, एक ऊँटनी ली और सफ़र शुरू हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँटनी पर सवार हो जाते हैं, ग़ुलाम लगाम खींचे चला जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह बकरा की तिलावत शुरू करते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। जब सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल होती है और ग़ुलाम को कहते हैं कि ठहरो, नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा वक्त ख़त्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है। ग़ुलाम सवार हो जाता है और दो सुपर पावर से बयकवत टक्कर लेने वाला हेड ऑफ स्टेट खलीफा वक्त उस लगाम को पकड़ के, वो ग़ुलाम ऊपर सवार है और वो उस लगाम को खींच के खींचते चले जा रहे हैं। और सफ़र कहाँ का है? फ़लस्तीन बैतुल मुकद्दस के तरफ। फिर सूरह बकरा शुरू करते हैं और इस तरह जब सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल हो जाती है तो कहते हैं कि ग़ुलाम तुम भी नीचे आ जाओ, इसलिए कि तुम्हारा वक्त भी मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया। सोचने का मसला यह है कि वक्त ख़त्म हो गया सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल होने पर, गोया कि लगता ऐसा है कि वक्त भी ये लोग कुरान से मालूम करते थे। सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल हुई तो वक्त भी ख़त्म हो गया, वो नीचे आता है। और अब हज़रत उमर अनु पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि अब किसकी बारी है? तो वो अर्ज़ करता है कि आका अब तो आपकी बारी है। कहा नहीं, अल्लाह की कसम न तुम्हारी बारी न मेरी बारी, अब इस ऊँटनी की बारी है, इसलिए कि ये भी जानदार है, अल्लाह की मखलूक है, इसको भी रेस्ट चाहिए, तुम भी पैदल चलो, मैं भी पैदल चलूँगा। और इस तरह ये सफ़र फिर जारी हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कल जो इंसानों जानवरों और परिंदों का शिकार करते थे, अल्लाह की कसम आज जानवरों के साथ इंसाफ, अदल फारूकी का ये मजहर नज़र आता है कि ये जानवर है, मखलूक है, इसको भी रेस्ट चाहिए, आज जानवरों के साथ भी इंसाफ कर रहा है। ये कुरान का नमूना है, ये मॉडल है। और इस तरह सफ़र चलते चलते जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचते हैं तो बारी सवारी करने वाला वो ग़ुलाम था, हेड ऑफ स्टेट खलीफा वक्त न थे। हज़रत उमर रज़ी अन्हु, वो जगह ज़रा कीचड़ वाली थी, जूता उतार लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह आगे बढ़ते हैं लगाम खींचते हुए ऊँटनी की। और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, जिनको इतला मिल गई थी कि आप पहुँचने वाले हैं, तो वो इस्तकबाल के लिए थोड़ा आगे आ जाते हैं। और जब आते हैं तो देखते हैं कि खलीफा वक्त उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हाथों में जूते हैं। तो वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आप जूते पहन लीजिए, इसलिए कि ये लोग क्या तस्वुर करेंगे कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो जूते हाथ में पकड़ता है और इस तरह सफ़र करता है। और दूसरा ये कि आप सवार हो जाइए और वो समझेंगे कि सवारी करने वाला ऊँटनी की पीठ पर ही खलीफा वक्त है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त कहा कि वैहक या आबा उबैदा सकलत का उम्मुक, तुझे तेरी माँ गुम पाए, ये बात तूने कैसे की? इज्जत जूते हाथ में पकड़ने से नहीं मिलती, वल्लाहि अज़न अल्लाह बिल इस्लाम वल कुरान, हमें तो इज्जत मिली है इस्लाम के ज़रिए और कुरान के ज़रिए, इन जूतों को हाथ में पकड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी रहा कि ग़ुलाम नीचे उतर आए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये अदल के ख़िलाफ़ है, बारी उसी की है, वही करेगा और लगाम खींचने की बारी मेरी है। इस तरह ये काफ़िला आगे बढ़ जाता है। और फिर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह एक और ऑफ़र करते हैं, उन्होंने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कपड़े पुराने हैं, कुछ पैवंद लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आज हमारा हर मुजाहिद उसके पास इतना माल गनीमत है कि वो अगर रोज़ हरीर और रेशम का जोड़ा पहनना चाहे तो पहन सकता है, और आपके कपड़े पुराने हैं तो क्यों ना आप भी एक हमारा जोड़ा जो है नया पहन लीजिए। तो हज़रत उमर अनो ने वो जोड़ा नया पहन लिया, और पहनने के बाद जो अपने जिस्म की तरफ देखा तो फौरन पुकार उठे, कहा कि हलका उमर, हलका उमर, हलका उमर, या अबा उबैदा वे हक, अबू उबैदा तूने मुझे हलाक कर दिया, तू सबब बन गया, ये कपड़े जो नए मैंने पहने हैं इससे उमर तकब्बुर में मुब्तला हो गया है, और अल किब्र रिदाउल्लाह, किब्र जो है तकब्बुर, वो अल्लाह की चादर है, मेरे वो पुराने कपड़े लाओ। वो वापस लाए, और हर आदमी के साथ ऐसा होता है कि जब वो नए कपड़े पहनता है, देखें ज़रा आदमी देखता है अपने कपड़ों की तरफ, ज़रा कलफ शलफ ये वो सारा कुछ होता है, यही तकब्बुर, जिसमें हज़रत उमर को एहसास हो गया कि ये काम मुझसे गलत हो गया। वो कपड़े उतार दिए और वही पुराने पहन लिए। पहनने के बाद आगे बढ़े किले की तरफ, और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐलान किया कि वो जिसका तुमने डिमांड की थी वो आन पहुंचा है, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दीवार किला की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त ये कहते हैं कि अमीर अल मोमिनीन, आप अकेले ना जाइए, मैं कुछ आपके साथ बॉडीगार्ड भेज देता हूँ, इसलिए कि कहीं इनकी कोई चालाकी ना हो, साजिश ना हो, आपको ये हलाक ना कर दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गुस्से में आ गए, कहा कि लऊ मा काला रसूलुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अमीनु हज़िहिल उम्मा लअरफ्त माज़ा अना। अबू उबैदा, आपके बारे में मेरे रसूल ने अगर ये ना फरमाया होता कि आप इस उम्मत के अमानतदार तरीन इंसान हैं, तो मैं बताता कि आपने ये बात कैसे की है। हल ज़ाउफ़ा ईमानो, तेरा ईमान इतना ज़ईफ़ हो गया है। इन्नल मौत वल हयात मिन फौक सबा समावात, वो ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, तेरा ईमान कमज़ोर हो गया है कि ये मुझे मौत दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाते हैं, दीवार के पास खड़े होते हैं। वो पादरी अपनी किताब खोले, वो निशानियाँ गिन रहा था, 1, 2, 3, 4, और इस तरह गिनता गिनता जो आखिरी निशानी थी, उसने कहा कि अरबों गिनो अपने इस हेड ऑफ स्टेट जिसको उमर कहते हैं, इसके कपड़ों में गिनो, हमारी किताब कह रही है कि उसके अंदर 7 पैबंद लगे होंगे, अगर ये 7 हैं तो हमारी किताब सच कहती है, और अगर ये 6 हैं या 8 हैं तो फिर ये वो शख्स नहीं है। जब गिने गए तो 7 ही पैबंद लगे हुए थे, तो उसने इशारा किया पीछे अपने किले में रहने वालों को कि खोल दो, अल्लाह की कसम ये वही नामूस है जिसकी हमारी किताब में खुशखबरी दी गई है। दरवाज़ा खोल दिए गए उस बैतुल मुकद्दस के किले में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल होते हैं और सारी रात अल्लाह के सामने सजदे करते हुए, रुकू करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, कोई जश्न नहीं मनाया, अज्ज इनकसारी, अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह तूने इतनी बड़ी फतह अता की है, सारी रात गुजार दी। और ये वही उमर हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जिसका सफ़र की मैंने बात की है, मदीना मुनव्वरा में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नमूना है कुरान के, चलते फिरते कुरान थे। मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ता है उनके दौर में, और मदीना के रहने वाले गोश्त अरब अमूमन ज़्यादा खाते हैं, गोश्त लोग ना खा सके, और एक दिन उन्होंने इकट्ठे होकर एक ऊंट ज़बह किया, गोश्त पकाया गया और लोगों ने मिलकर खाया। ये गोश्त जो मिलकर खाया गया उसमें जो बावर्ची था वो उसने ऐसा किया कि कुछ अच्छी अच्छी बोटियाँ उसने रोस्ट कर ली, भून लिया और अलग से रख दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बावर्ची, वो रोस्टेड और भुनी हुई वो बोटियाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रख देता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त उससे पूछते हैं लिमन हाज़त ताम, ये किसका खाना है, तो वो ये कहता है कि लक या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन ये आपका है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो उस वक्त उससे पूछते हैं कि क्या इस मदीना के रहने वालों ने इसी तरह सब ने ये रोस्टेड बोटियां खाई हैं, ये भुना हुआ गोश्त खाया है? तो वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है अमीरुल मोमिनीन। तो फिर वो कहते हैं, तारीखी जुमला है, तारीख ने अपने अंदर महफूज किया है, वो फरमाते हैं कि इरफानी हजरत ताम, इस खाने को मेरे सामने से उठा के परे कर दो, लो सालानी अल्लाह सुबहानहु व तआला यौमल क़ियामा, अगर अल्लाह ने क़ियामत के दिन मुझसे ये पूछ लिया कि तू तो रोस्टेड बोटियां खाता था, मदीना के बच्चे भूख से बिलबिलाते थे, तो उमर क्या जवाब देगा? ये कुरान का एक नमूना है, और इस कुरान के नमूने को अगर उनकी हम ये तारीख पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें, उनके हालात को पढ़ें, तो कुरान बिल्कुल समझ आता है। कुरान ऐसे ही नमूने तैयार करता है, ये एक नहीं, दो नहीं, ये कुरान के तैयार करदा नमूने लाखों की तादाद में हैं जो मदीना और मक्का से निकले और उन्होंने दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया। शाह रोम ने एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अपना एक एलची भेजा। वो मदीना मुनव्वरा पहुंचता है और लोगों से पूछता है कि अइना मलिकुकुम, तुम्हारा बादशाह किधर है? तो वो कहते हैं कि लैसा लना मलिकुन इल्लल्लाह, हमारा कोई बादशाह नहीं सिवाय अल्लाह के। तो वो हैरान होता है, वो कहता है फमन हुआ, उसको क्या कहते हो तुम? तो वो कहने लगे कि हुआ अमीरुल मोमिनीन, हम उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तो वो कहता है फ़ाइना हुआ, वो कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि यमशी फिल अस्वाक, वो इधर ही मदीना जो उस वक्त छोटी सी बस्ती थी, यहीं गलियों में कहीं चल फिर रहे होंगे। वो ये सुन के हैरान हो जाता है, वो ये कहता है कि यमशी फिल अस्वाक, गलियों में चल फिर रहा होगा, जो दो सुपर पावर से बशक वक्त जिसकी फौजें नबर्द आजमा हैं, वो यहाँ गलियों में फिर रहा होगा। उसकी अकल ये मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन ऐसा ही उन्होंने कहा कि ऐसा ही है। कहा फिर मैं तो नहीं जानता। एक बच्चे को साथ मिलाया गया, वो बच्चा लेके सारा मदीना मुनव्वरा घूम गया, लेकिन हजरत उमर वहाँ ना थे, लिहाजा वो ना मिले। वो बच्चा कहता है कि जनाबे वाला, आप इधर मदीना में नहीं हैं। कहा तो फिर कहाँ हैं? कहा मेरे साथ आ जाइए। वो मदीना के मज़ाफ़ात में बैतुल माल के ऊंट और बकरियां चरा रहे होंगे। वो कहने लगा, बेटे तुम ये क्या बात कर रहे हो, मेरी समझ से बालातर है कि वो हेड ऑफ स्टेट बकरियां और ऊंट चराता है? कहा आप आ जाइए ना मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ। और वो ले कर मदीना के मज़ाफ़ात में जब निकल जाता है तो एक छोटी सी झाड़ी है, उसके नीचे एक इंसान सो रहा है। एक बड़ा सा पत्थर उसने अपने सर के नीचे बतौर तकिया रखा हुआ है, और वो खराटे लेकर अमन की ज़िंदगी, अमन के साथ, आश्ती के साथ सो रहा है। कोड़ा जो है पहलू में पड़ा है, बकरियां और ऊंट चर रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि जनाबे वाला, ये हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। वो ये मंज़र देख कर कतन मानने के लिए तैयार नहीं था। वो ये कह रहा था कि बच्चे तुझे गलतफहमी हुई, ये वो नहीं हो सकता, इसलिए कि उसके खौफ से तो हमारे लोग जो हैं वो वहाँ, उनको चैन नहीं आता, ये यहाँ चैन से सो रहा है। उसने कहा कि जनाबे वाला यही हैं। कहा मैं नहीं मानता। बच्चे ने जो जवाब दिया है हजरात, वो भी सुनिए, कमाल है। वो बच्चा कहता है कि आप मुझे मेरी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पांच वक्त ये मेरा इमाम होता है, मैं इसके पीछे नमाज अदा करता हूं, मैं कैसे भूल सकता हूं? आज के तो बड़े नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो उस वक्त का बच्चा बतौर दलील इसको बात कर रहा है कि जिसके पीछे मैं पांच वक्त मुक्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ता हूं, मैं नहीं भूल सकता। जब ये बात हुई तो उसने फिर एक जुमला कहा जो तारीख ने अपने अंदर महफूज किया। उसने कहा कि वल्लाही अमनत अला हाज़िहिल अर्ज़ फनिमत बिलमन, तूने इस जमीन पर अमन कायम किया है, खुद भी अमन से सो रहा है। واللہ اما ملوکنا فلا ینامون من خشیتک انت فی قصورہم، اللہ کی قسم ہمارے بادشاہ تیرے ڈر سے اپنے محلات میں رات کو نہیں سو سکتے۔ یہ وہ عمر ہے، یہ قرآن کا ایک ماڈل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت کی ہے اور قرآن کا ایک ماڈل چلتا پھرتا اس نے دیکھا۔ اور آئیے دیکھیے کہ خاتمہ کیا سا ہوتا ہے۔ جب شہید کر دیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جب قبر کے بارے میں یہ سنا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، قبر کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ ہلکان ہو جاتا ہے، آپ کو آپ اتنا روتے کیوں ہیں، باقی بھی چیزیں ہیں؟ کہا لوگوں، قبر اس دنیا کی زندگی کے بعد پہلا ٹیسٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا وہ اگلے ٹیسٹوں میں پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ لہذا سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملتے ہیں تو پہلا سوال ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین لما دفناک ماذا حدث معک، جب ہم نے آپ کو دفن کر دیا اس کے بعد آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ انسان کو قبر میں تین سوالوں کا جواب جو ہے وہ ہر ایک کو دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ یہ تین سوال بالکل پرچہ ہی آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اب کون اس کی تیاری کر رہا ہے اور کون تیاری کر کے جائے گا، یہ سب وہیں جا کے پتہ چلے گا قبر کے اندر ہی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال ہی یہی کر ڈالا کہ امیر المومنین، جب ہم آپ کو دفن کر کے آ گئے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو سنیے جو جواب ہے وہ ہے انجام اس قرآن کے تیار کردہ نمونے کا۔ کیا یہی قرآن ایسے ہی نمونے تیار کیے ہیں اور چاہتا ہے کہ ایسے ہی نمونے ہوں؟ قرآن آج بھی وہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہے تو وہ نمونے نہیں ہیں، اس لیے کہ آج ہم اس دین کے راستے میں ہم نمونے نہیں بن سکے، ہم ہی رکاوٹ ہیں، ورنہ قرآن تو وہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو جواب دیتے ہیں وہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین، آپ کو معلوم ہے کہ منکر اور نکیر آ کر یہ تینوں سوال پوچھیں گے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ لم امیر یا امیر المومنین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یا امیر المومنین لما رأیت ملکین سألتهما من ربکما، میں نے جب دو فرشتوں کو دیکھا منکر اور نکیر کو تو میں نے ان سے پوچھا کہ من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، عمر یسأل لا یسأل، عمر اب سوال کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، اس سے سوال نہیں کیا جاتا، وہ فرشتوں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ انجام ہے، یہ انجام ہے اس ایک نمونے کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہاں تو لاکھوں نمونے ہیں، حجت الوداع کے موقع پر کتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، 100,000 سے زیادہ لوگ تھے، یہ سب قرآن کے نمونے تھے۔ کس کس کا ذکر کروں؟ یہاں مردوں کو تو کیا ذکر کروں، عورتیں ان سے سبقت لے گئی ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وقت ہو جاتا ہے نماز کا، ایک صحابی ہیں ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ام طلحہ کوئی کپڑا دے دو، اس لیے کہ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیہاتوں میں بھی کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ قمیض کے بغیر ہی ایک دھوتی باندھی ہوتی ہے کام کرتے ہیں۔ یہ صحابی اتنے غریب تھے کہ غربت کی انتہا ہے، اور اپنی بیگم سے، بیوی سے کہتے ہیں کہ ام طلحہ کوئی کپڑا دے دو، اس لیے کہ میرا بدن ننگا ہے، میں نماز میں جاؤں گا، میرا امام میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ننگے بدن کو دیکھیں گے तो अच्छा नहीं लगता। वो बेचारी कपड़ा ढूंढने के लिए सारे घर में घूम जाती है, लेकिन कपड़ा होता तो मिलता। गुर्बत की इंतहा है। ये वो नमूने हैं जो कुरान ने तैयार किए हैं। और वो आके बताती है कि अबू तलहा कपड़ा तो है कोई नहीं। इतने में वो देखते हैं कि बीवी ने जो एक रिवायत में आता है कि दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और एक रिवायत में आता है कि जो चादर ओढ़ी हुई थी, वही कहा कि उम्मे तलहा यही दे दो, जल्दी करो कि नमाज जो है वो मेरी तकबीर ऊला चली जाएगी। वही चादर ऊपर ओढ़ लेते हैं और चले जाते हैं। साफ जाहिर है कि वो दुपट्टा था या वो चादर थी जो रंगदार थी, जो ख्वातीन ओढ़ती हैं। नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, देखा कि अबू तलहा तो बीवी का दुपट्टा या चादर ही ओढ़ के आया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज है अपने सहाबा की तरबियत करने का, ये सवाल ही नहीं किया कि अबू तलहा तेरे पास कोई कपड़ा ना था कि तू बीवी का ही चादर ओढ़ के आ गया। नहीं, कहा अबू तलहा मेरे साथ आ जाओ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ले गए, अंदर दाखिल हुए। कहा आयशा, वो जो मेरे कपड़े पड़े हैं, एक जोड़ा मैंने पहना हुआ है और दूसरा जोड़ा जो है वो ले आओ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो जोड़ा ले आती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जोड़ा दे देती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते हैं और अबू तलहा को कहते हैं कि अबू तलहा देख, मेरे पास दो जोड़े हैं, एक मैंने पहना हुआ है, एक तू पहन ले। आप अंदाजा करें तरबियत का अंदाज क्या है। ये बात ही नहीं की कि तुम्हारे पास कपड़ा था या नहीं था। मालूम हो गया ना कि घर में कुछ होता तो, वरना बीवी का ये चादर ओढ़ के आने का मतलब क्या है। तो हजरत अबू तलहा ने वो जोड़ा ले लिया, घर पहुंचते हैं और देखिए ये खातून किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं है। देखते ही कहती है कि अबू तलहा ये कपड़े कहां से लाए तुम। अबू तलहा, और तुमने कहीं हल शकौत इंदल्लाह हल इंद अहदिन शकौत अल्लाह। अबू तलहा, तूने किसी को अपनी गुर्बत का रोना रोया होगा ना, तभी उसने तुझे ये कपड़े दिए, तूने ऐसा क्यों किया। हजरत अबू तलहा कहते हैं उम्मे तलहा तू मेरी बात तो सुन। कहा तेरी बात क्या सुनूं मैं, तू ये कपड़े ले आया, तूने अपनी गुर्बत का रोना रोया किसी के सामने, तब उसने तुझे ये कपड़े दिए, और तूने ये कपड़े क्यों लिए। आज की कोई खातून सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुहासबा करे अपने खामिंद का। वो इस तरह तो मुहासबा करती है कि एक फ्रिज आया है तो दूसरा क्यों नहीं लाए हो, एक गाड़ी है तो दूसरी क्यों नहीं आई, लेकिन वो कहती है लिया क्यों, तुम्हारी और मेरी खुददारी के खिलाफ है कि हम किसी से ये कपड़े मांग ले। ये कुरान के तैयार करदा नमूने। अबू तलहा कहते हैं उम्मे तलहा तू मेरी बात तो सुन। कहा मैं क्या बात तुम्हारी सुनूं, तुम लिए खड़े हो ये कपड़े, ले आए हो तो किसी हल शकौत अल्लाह इंदा, किसी के हाथ तो रोना धोया होगा ना। कहा नहीं उम्मे तलहा तू बात सुन, ऐसा हुआ कि सलाम रसूलुल्लाह सल्लम ने फेरा और मुझे कहा अबू तलहा मेरे साथ आ जाओ, मैं आपके साथ चला गया। अंदर से वो जोड़ा लाए, उन्होंने मुझे ये अता फरमाया। कहा अच्छा, फिर इसका मतलब यह है कि तूने हल शकौत अल्लाह इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अबू तलहा तूने अल्लाह के रसूल के हाँ अपनी गुर्बत का रोना रोया होगा ना, तभी उन्होंने ये तुझे कपड़े, और तूने ये कपड़े लिए क्यों। वो कहते हैं उम्मे तलहा तू मेरी बात सुन, मैंने ये किस लिए लिए, तू वो भी तो सुन लेना मेरी बात। कहा सुना क्या सुनाएगा, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गुर्बत का रोना रोकर ये कपड़े लिए, लिए क्यों। कहा उम्मे तलहा देख, मैंने सिर्फ एक चीज के लिए लिए, और तू वो अपने जहन में रख, मैं तुझे वसीयत करता हूं, और वसीयत क्या है कि ये जोड़ा रख ले, जब मैं फौत हो जाऊं मुझे इसी जोड़े के अंदर कफन दे देना, कफन इसी के अंदर दे देना। जब मुनकर और नकीर आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, किसके निजाम को तू अपना कर जिंदगी गुजार कर आया है मां दीनों का, और तीसरा सवाल वो ये करेंगे कि मन नबियों का, और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मुनकर और नकीर कहते हैं मा रायुका फी हाज़र रजुल, इस शख्सियत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में तेरी राय क्या है। तो उम्मे तलहा जब मुझसे वो ये सवाल करेंगे कि माजा रायुक फी हाज़र रजुल, तो मैं उस वक्त उनको जवाब दूंगा, तुम उस शख्सियत के बारे में मुझसे राय पूछते हो, मैं तो उसी का जोड़ा ही पहन के आ गया हूं। तो हजरात ये नमूने हैं, ये कुरान के नमूने हैं जो उसने तैयार किए हैं। कुरान आज भी वही है, कुरान कतन नहीं बदला, ना कोई बदल सका है। बदल गए तो हम बदल गए, या हमने कुरान को दूसरी तफसीर उसकी बयान करके अपने आप को लोगों के सामने जाहिर किया। अल्लाह की कसम, इस दीन के रास्ते में, इस इनकलाबी इस्लामी इनकलाब के रास्ते में हम रुकावट हैं, कोई और चीज़ रुकावट नहीं। हमारा दुश्मन रुकावट है ही नहीं, हम रुकावट हैं। वो देखते हैं कि ये कुरान, हाँ, इसका नमूना कहाँ है? कोई नहीं है। लिहाजा वो किसको देखें और किसको देखकर वो इस कुरान को मान लें? हजरत हमें आज हमें ये सोचना होगा कि वहाँ की तो ख्वातीन, उनका ये किरदार, ये करेक्टर है जो कुरान के मुताबिक तैयार है, कि वो गुर्बत की इंतहा है, लेकिन ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो रूम, वो जो ईरानी महाज से साथ में नबी वक्कास, वो एक नौजवान को वो किसरा का ताज, किसरा के कंगन, किसरा का वो बेल्ट जो जंग के वक्त वो पहनता था, और किसरा की वो तलवार जो सोने की थी, ये चार चीज़ें देकर रवाना करते हैं। और वो नौजवान मदीना मुनवरा पहुंचता है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, वो नौजवान उनके सामने पेश करता है और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, ये चार चीज़ें हैं, अमानत हैं, जो साद बिन अबी वक्कास ने मुझे देखकर रवाना किए हैं। हजरत उमर पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो नौजवान जो इस कुरान का मॉडल था, वो कहता, अमीरुल मोमिनीन, आपको इससे क्या फर्ज है, मेरा नाम क्या है, आप ये अमानत संभालिए और मुझे रसीद दे दीजिए, मैं जाकर हजरत साद बिन अबी वक्कास को बताऊं कि मैं अमानत सुपुर्द करके आ गया हूं। वो नौजवान खड़ा था, साथ ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। हुजूर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं वो ताज जो किसरा का था, जिसमें हीरे जवाहरात और सोने का था, अल्लाह की कसम, आज भी अगर ये कन्फर्म हो जाए कि ये ताज वही है जो किसरा का था, आज भी अरबों डॉलर, खरबों डॉलर उसकी कीमत लग जाएगी, आज की इस दुनिया में भी ये कन्फर्म हो जाए। इतना कीमती ताज वो नौजवान सुपुर्द करता है, और वो तलवार जो सोने की थी, वो किसरा की थी, उसकी कीमत भी आप पहाड़ जितना सोना देकर भी लोग वो आज भी खरीद लेते, और उसका वो बेल्ट और उसके वो कंगन जो सोने के थे, वो इतना ईमानदार इंसान था वो नौजवान, इतना ईमानदार कि उसने मिनवान वो चीज़ें जो हैं स्पुर्द कर दी। गोया कि ये चारों चीज़ें उसकी आंख में कोई वक्त ही नहीं रखती हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस नौजवान को देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, नीचे देखा तो पाँव में जूता ही कोई नहीं। क्या चीज है ये? ये है वो किरदार जो कुरान पैदा करता है। एक तरफ ईमानदारी की इंतहा, दूसरी तरफ गुर्बत की इंतहा है कि पांव में जूते कोई नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर कहते हैं, या अली उन्ज़ुर इलैही हल हाज़ा बशरुन अम मलकुन नज़ल मिन अस्समा। अमीरुल मोमिनीन, अली देखो इस इंसान को, क्या यह कोई इंसान है या कोई फरिश्ता है जो आसमान से उतरा है? और फिर सवाल किया, लिमाज़ा वसल अल अम्र इला हाज़िहिल ग़ाया, अली मामला यहां तक कहां पहुंचा है कि इंतहा की गुर्बत, इंतहा की ईमानदारी, मामला यहां तक आन पहुंचा। तो हजरत अली कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, लव कान अल हुक्काम मिसलक फर्रिजालु हकदा, अल्लाह की कसम, अगर हुक्मरान आप जैसे होंगे तो फिर लोग भी ऐसे होंगे, कारकुन भी ऐसे होंगे। आज इस बात की ज़रूरत है कि इस कुरान के मुताबिक नमूना उसी तरह लोग दुनिया के सामने पेश किया जाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान का नमूना बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।